ओम शांति। सभा में उपस्थित हमारे महानुभाव जो स्टेज पर आज अपना स्थान शोभायमान करने वाले हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर, प्रोफेसर केपी मिश्रा साहब, डॉक्टर विनय भाई पाठक, डॉक्टर बीके सीमाबेन, राजयोगी बीके करुणा भाई, प्रोफेसर वेद गुलियानी जी, डॉक्टर के एस राठी और बीके अनुराधाबेन, स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर विनय भाई पाठक सभा में उपस्थित है या जिस भी सेंटर से आए हैं जरा बताएंगे वो हाजिर है या नहीं। वाइस चांसलर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, छोटी कुमारी तनिषा स्वागत डांस करेगी और हम सबका स्वागत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी तनिषा का। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ज्ञान सरोवर परिसर में शिक्षा में मूल्य एवं आध्यात्मिकता का आज हारमोनी हॉल में समापन सत्र है। अब तो आप घर के हो चुके, चार दिन से यहाँ, चार दिन से ज्यादा रहे तो मेहमान नहीं कहेंगे ना, आप सब घर के हो गए तो परिवार में भी आपका स्वागत है। तो आज के विषय को लेकर के मैं डॉक्टर बीके सीमाबेन को आमंत्रित करती हूँ। आप लुधियाना के अंदर बीएड एमएड कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ 20 वर्ष से जुड़ी हुई है, एजुकेशन विंग की आप एग्जीक्यूटिव मेंबर है। आप सबको अगर हम कहें कि आप भी जाकर के इसको कंटिन्यू करना, थोड़ा समय करेंगे भी सही लेकिन एक एक्सक्यूज बताएंगे, बेंची टाइम नहीं है, लेकिन हम आपके सामने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास हर रोल मॉडल है उसमें से एक रोल मॉडल आपके सामने रख रहे हैं, जो आप कॉलेज में भी पढ़ाती है और साथ साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आप गॉडली स्टूडेंट भी है, दोनों का बैलेंस करती है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ, आज के विषय पर वो अपनी वक्तव्य बताएंगे।
ओम शांति। इतना धीरे से ओम शांति, नाश्ता किया था? ओम शांति। अब पता चल रहा है। आज का हमारा विषय ब्लेंडिंग साइंस विद वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर अ बेटर वर्ल्ड। टॉपिक वहां पर भी खत्म हो सकता था, ब्लेंडिंग ऑफ साइंस विद वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या जरूरत थी ये लिखने की फॉर बेटर वर्ल्ड? क्या साइंस ने बेटर वर्ल्ड नहीं बनाया है? सोचिए जरा, एक हाउसवाइफ की ही उदाहरण लीजिए, घरों में पहले लकड़ियां इकट्ठी करने जाना, गेहूं को पीसना, आटा गूंधना, रोटी बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धुलाई करना, सब काम किया जाता था। लेकिन आज साइंस ने ये कितना आसान कर दिया है, स्विच दबाते ही सब काम हो जाता है। कंप्यूटराइज्ड वॉशिंग मशीन्स हैं, कभी लकड़ियां काटने जाने की जरूरत नहीं है, गैस की सुविधा घर घर में पहुंच गई है। खाली घरों में ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात हो रही, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज हम यहां हैं, विद इन आवर्स हम इंग्लैंड में हैं, किसी और कंट्री में हैं। न्यूज एजेंसी कबूतर के द्वारा एक लेटर देकर के मैसेज पहुंचाया जाता था, आज किसी भी वर्ल्ड के कोने में कुछ भी हो रहा है वो हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल हम डिनाई नहीं कर सकते। मेडिसिन के फील्ड में, सर्जरी के फील्ड में कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, लेकिन इन सब का फायदा कुछ गिने चुने लोग ही उठा पा रहे हैं। कितने हैं जो हमारे में से बायर ट्रेवल कर सकते हैं, कितने हैं जो हमारे में से अच्छे स्कूल्स व कॉलेजेस में अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सकते हैं। यहां पर ह्यूमन राइट्स की बात करना, अपने आप सोच लेंगे इकोनॉमिक्स का, ये मनी का रोल कितना, अपने आप वो उन ह्यूमन राइट्स से वंचित हो जाते हैं। चलो उनकी बात छोड़ो, जो साइंस का इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं इन गैजेट्स का, इन सब फैसिलिटीज का, क्यों टॉपिक लिखने वाले को जो जरूरत पड़ी फॉर अ बेटर सोसाइटी, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब यूज करने के बाद भी क्या हम खुश हैं, क्या समाज बेहतर बना है? इस प्रश्न को जब आप सोचेंगे तो पता चलेगा कितनी जरूरत थी इन तीन शब्दों को बाद में अटैच करने की। भूटान के प्राइम मिनिस्टर जी से एक बार पूछा गया, आपके कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है? उन्होंने कहा, पर कैपिटा इनकम का तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मेरी कंट्री में पर पर्सन हैप्पीनेस कितनी है उसके साथ मैं कंसर्न्ड हूं। और आज तक वो कंट्री पर पर्सन हैप्पीनेस के लिए बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल तक कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आज साइंस की वजह से मटेरियल वैल्यूज हावी हो रही हैं, प्रेडोमिनेट कर रही हैं, और साइंस वैल्यूज का स्थान गॉन होता चला जा रहा है। इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन की वजह से हम आज मनी को ही सब कुछ मान बैठे हैं। जरा सोचना, धन से हम अच्छा खाना तो खरीद सकते हैं, क्या भूख खरीद सकते हैं? धन से हम अच्छे बेडरूम्स बना सकते हैं, एसीज खरीद सकते हैं, क्या धन से नींद को खरीदा जा सकता है? धन से हम अच्छे अच्छे मकान बंगलोज बना सकते हैं, क्या धन से हम परिवार को एक रस जोड़ करके घर बना सकते हैं? धन से हम बढ़िया से बढ़िया इलाज, बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन खरीद सकते हैं, क्या हम धन से एक श्वास भी खरीद पा सकते हैं? धन से हम बढ़िया किताबें खरीद सकते हैं, क्या धन से हम विवेक खरीद सकते हैं? किस ग्रीड की बात करते हैं? क्लासरूम से वहां एक स्टोरी पढ़ाते हैं, एक व्यक्ति था, उसके पास एक मुर्गी थी, रोज वो गोल्डन एग देती थी, याद होगी आप सबको स्टोरी। एक दिन मन में आया कि एक ही बार में सारे एग्स निकाल लूं, मुर्गी को काट दिया, एक भी गोल्डन एग हाथ में नहीं लगा। ये उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये जितने भी सब सुन रहे हैं उन सब की कहानी है। साइंस ने आज इतना ज्यादा एडवांसमेंट कर ली है, आपने शायद सुना हो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कि नीचे तो हम पोटैटोस को बीज दें, ऊपर तो हम टोमेटोस को बीज दें, उतनी ही भूमि से दो दो फसलें लेने का लालच, अल्टीमेटली अपनी ही जनरेशन में सब कुछ स्नैच कर लें, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ना बचे, ये हैन वाली कहानी हम सबकी है। इसलिए आजकल कॉन्फ्रेंसेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक रखना पड़ता है। शायद आने वाले टाइम में हम इतना सब कुछ पल्यूट कर जाएंगे, नन्हे नन्हे बच्चों को स्कूल में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाना पड़ेगा, हम इतना दूषित कर जाएंगे वातावरण को। क्या सचमुच साइंस से बेहतर समाज हो रहा है? एक छोटा सा समन्वय साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का, एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी लैब में काम कर रहे थे, आपको भी मालूम है स्ट्रक्चर ऑफ अग्नि मिसाइल्स के टाइम पर एक न्यू मेटल कार्बन कार्बन का आविष्कार हुआ। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से उनके बहुत अच्छे एक मित्र उनके पास आए, जब वो लैब में काम कर रहे थे, उस मेटल को उठाया, इतनी हल्की थी इतनी हल्की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी अपने मित्र को, अपने हॉस्पिटल में लेकर के गए और वहां पर वो फिजिकली चैलेंज बच्चों को जो कैलिपर्स पहनने पड़ते थे, 3 किलोग्राम का एक कैलिपर, उन्होंने रिक्वेस्ट करी क्या इस मेटल को यूज करके इन कैलिपर्स को बनाया जा सकता है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे कैलिपर्स को तैयार किया गया, इतने हल्के, जब नन्हे नन्हे बच्चों ने उस कैलिपर को पहना, जो कि पहले ड्रैग करते थे अपने आप को, आसानी से उनकी मूवमेंट होने लगी, उन सबको देख करके उनके पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए। ये है साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक सुंदर सा समन्वय का। लेकिन क्या सचमुच में साइंस क्या है? फिजिकल सेंसेस से जो हमें मिलता है उसी के साथ सीमित है। कितना हम अपनी सेंसेस को, नो डाउट साइंस ने बहुत इन्वेंशन कर ली है, अपनी ही आंख की शक्ति को इतना बढ़ा लिया है, माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करके, टेलीस्कोप को इन्वेंट करके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट करके अपनी ही आंख की शक्ति को बहुत बढ़ा लिया है। लेकिन अगर आप वास्तव में देखें, इन सेंसेस की एक सीमा है। एक ही उदाहरण देंगे, 5 सेंसेस की समय की सीमा को देखते हुए उदाहरण नहीं लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक किसी पैन में थोड़ा सा नॉर्मल वाटर है, आप में से किसी बहन को कहा जाए आप गर्म पानी में हाथ डालो और फिर आकर के इस ठंडे पानी में हाथ डालो, एक किसी भाई को कहा जाए आप आइस कोल्ड वाटर में अपना हाथ डालें और फिर आकर के नॉर्मल वाटर में अपना हाथ डालें, वो बहन कहेगी ये पानी बहुत ठंडा है, वो भाई जिसने आइस कोल्ड वाटर में हाथ रखा हुआ था वो कहेगा पानी बहुत गर्म है, पानी वो ही है। हाउ मच वी कैन रिलाई ऑन आवर सेंसेस। जितने भी साइंटिस्ट बैठे हैं, हम 5 ही इंद्रियों की उदाहरण नहीं दे रहे। और एक ऑब्जेक्ट है साइंस का, ऑब्जेक्ट ऑफ द साइंस इज टू नो रियलिटी, वास्तविकता को जानना, सत्य को जानना। स्पिरिचुअलिटी हमें आंसर देती है कितने शाश्वत सत्य इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। 3 शाश्वत सत्य क्या है? वो 3 शाश्वत सत्य, 3 realities आर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। मैटर के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये जो 2 सत्य हैं, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। लेकिन साइंस की एक वीकनेस है कि जो कुछ लैब में वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स के, उनके मेथड्स, उनके टेक्निक्स की, अपरेटस के, उसके व्यू में, परव्यू में आता है, उसी चीज को मानते हैं। लेकिन मेटाफिजिकल एनर्जीज के लॉज को अगर साइंस एक्सप्लोर करना चाहती है तो स्पिरिचुअलिटी के साथ एक समन्वय बनाना पड़ेगा। आज वो पहले वाला जमाना नहीं रहा, कोपरनिकस एंड गलीलियो ने कुछ अपने आविष्कार दिए तो सभी रिलीजन के लोग उसके एंटी हो गए, लेकिन आज स्पिरिचुअलिटी साइंस का वेलकम करती है। लेकिन साइंस को भी स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलकर के इन मेटाफिजिकल एनर्जी को एक्सप्लोर करना होगा। 5 मेटाफिजिक्स के अंदर पॉइंट्स आते हैं। पहला है, क्या हम ये शरीर हैं या आत्मा है? दूसरा, मेटाफिजिक्स का सिद्धांत फर्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, हम क्या हैं? क्लासरूम्स में हम पढ़ा रहे हैं, ये माइक नॉन लिविंग है, ये पर्सन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये जो ह्यूमन बीइंग है ये लिविंग है। जरा सोचना, दो साल का बच्चा उसमें ही चेतन आत्मा निकल जाए, जो भी लिविंग के लिए आप करैक्टरिस्टिक्स क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो ग्रो करेगा, वो चल फिर सकता है। देखिए जरा, इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है उन्होंने इस शरीर में भी इस आत्मा को चेतन कहा है और शरीर को जड़ कहा है। और जितना जितना इन चीजों को हम एक्सप्लोर कर लेंगे, कॉस्मोलॉजी में थ्री वर्ल्ड्स आर एग्जिस्टिंग, ये फिलोसफर्स के क्वेश्चंस हैं जो सदियों से आप पूछते चले आए हैं। ये तीन एस्ट्रोनॉट्स भी अगर ये समझ लेंगे स्पिरिचुअलिस्ट के साथ मिलकर के, ये तीन वर्ल्ड्स कौन से हैं, ये थ्री रीजन्स कौन से हैं। एक तो ग्रॉस वर्ल्ड है जिसमें सब गैलेक्सीज प्लैनेट्स आ जाते हैं, जिसमें सब नासा के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन इससे ऊपर की दुनिया ल्यूमिनस वर्ल्ड, जितने भी यहां पर आपको सफेद पोशधारी मिल रहे हैं, ऑल ऑफ देम दे नो अबाउट दिस ल्यूमिनस वर्ल्ड द सटल वर्ल्ड। वहां पर कम्युनिकेशन कैसे होता है एक साइंटिस्ट जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक स्पिरिचुअलिस्ट जवाब दे सकता है कि उस दुनिया में कम्युनिकेशन कैसे होता है। वाणी नहीं है वहां पर, शब्द नहीं है, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडिया टू ट्रेवल, लेकिन कम्युनिकेशन होता है जो कि हम फेरी टेल्स में पढ़ते चले आए हैं। एक फरिश्ता आया, उड़ती उड़ती एक परी आई, उसको वरदान दिया। हम तो केवल थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। ऑन्टोलॉजी में तीन शाश्वत सत्य, परमात्मा, परमात्मा को तो साइंटिस्ट किसी भी उसमें मानते ही नहीं है, सब कुछ ब्रेन की एक्टिविटी मान लिया, वहां पर आत्मा का रोल और कॉन्शियसनेस का रोल जीरो कर दिया। साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दैट इज reincarnation theory. Incarnation is when the soul enters in the body, and the reincarnation is soul living in this body and entering into the womb of some other mother. Aaj science इस तरीके के आविष्कार तो कर रहे हैं, कितने इजी ढंग से डिलीवरीज हो सके, कौन सा ऐसा तरीका है बच्चे हेल्दी बन सके, लेकिन साइंस इस चीज का जवाब नहीं दे सकती कि एक नन्ना बच्चा आज निर्मा जैसे संपन्न परिवार में पैदा हो रहा है और एक नन्ना बच्चा आज रोड़ी कूटने वाले के पैदा हो रहा है। एक स्पिरिचुअलिस्ट आंसर दे सकता है। कॉस्मोग्नी, जिसमें कि स्पिरिचुअल एंट्रोपी आ जाती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, त्रेता में हम 14 कला संपूर्ण थे, द्वापर में 8 कला, कलयुग में 4, और धीरे धीरे वो भी 0 तक आ रहा, और उसके बीच में एक छोटा सा पीरियड आता है कॉन्फ्लुएंस एज, जिसमें आप सब भी पधारे हैं। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, सतयुगी दुनिया में कौन राज करने के लिए आएंगे, जो खालस हो जाएंगे। गॉड डिवाइन विल नॉट डिसाइड कि आप राजा बनेंगे, आप प्रजा बनेंगे, हमारी खालसपन की डिग्री ही ये डिसाइड करेगी वो कौन महाराजा बनेगा, कौन राजा बनेगा और कौन प्रजा में आएगा। ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ ऑफ एंट्रोपी ये सब जगह पर अप्लाई होता है। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। हमने थोड़ा थोड़ा सब उसके बारे में बताया। जब आप अपने अपने सेंटर्स पर जाएंगे, ये पूरा का पूरा लेसन अपने वहां के लोकल सिस्टर से आप ले सकते हैं, और बहुत सुंदर, आप सब डिनाई नहीं कर सकेंगे, आप सब हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत सुंदर समन्वय हमें मिल रहा है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जयसूर्य वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। हम आप सबके लिए शुभकामना करते हैं। सब इस स्थान पर आते रहिए, अपने परिवार वालों को भी लाते रहें, और भी सब हैं, और इस यहाँ की यूनिवर्सिटी की जो स्पिरिचुअलिटी है उसका लाभ उठाते रहें। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सीमाबेन। बेटर सोसाइटी किसको कहा जाता है, बहुत अच्छी बात बताई। किसी को बहुत सुख हो तो क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, स्वर्ग जैसा सुख। तो बेटर सोसाइटी, श्रेष्ठ समाज जो स्वर्ग में है। अभी मैं आमंत्रित करती हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर, वाइस चांसलर डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट सोलन। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मुझे चाणक्य का एक कोटेशन बहुत पसंद है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। न सिर्फ मंच पर लेकिन सभा में भी कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसीलिए कोई अपने बायोडेटा के मोहताज नहीं है, असाधारण ही है। इसीलिए मैं बायोडेटा नहीं पढ़ूंगी, असाधारणता की साधारणता बायोडेटा पढ़ के बताना नहीं चाहूंगी, सीमित करना नहीं चाहूंगी। और साथ साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा के घर में आए हैं, तो परमात्मा के बच्चे कभी साधारण नहीं होते। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर।
ओम शांति। परम आदरणीय इस मंच से मैं सबसे प्रथम यहाँ की सभी राजयोगिनी दादी जी को नमन करता हूँ जिन्होंने इस संस्था को, इस आइडियोलॉजी को चलाया है। साथ में यहाँ के जो भी ब्रह्म कुमारी भाई बहन है, मैं उनको भी नमन करता हूँ जो हर वक्त अपने कार्यों में लोगों की सेवा में जुटे हैं। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी जो मेहमान यहाँ पे आए हैं, मैं आपका भी सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला ऐसा एक मंच है जहाँ पे मैं इस तरह आया हूँ। आज तक अनेकों कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, पर लेकिन अपने विषय पे। मेरा विषय प्लांट साइंस है, जहाँ पौधों को जीवन दिया जाता है, और पौधे एक ऐसी न्यायत सृष्टि की रचना है जो हमको सब कुछ देती है, फल देती है, भोजन देती है, पानी भी देती है और छाया भी देती है। हम उस कार्य को करते हैं। मैं एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हूँ, उस विश्वविद्यालय में यही काम किया जाता है जहाँ पे जनमानस की सेवा के लिए, जिसको हम बेटर सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इस देश की 125 करोड़ आबादी के लिए हम क्या दे सकते हैं, वो हमारा कार्य है। उस कार्य को करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 47 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ खेती, बागवानी, फॉरेस्ट्री पे कार्य किया जाता है, और ऐसे विश्वविद्यालय में अनेकों वैज्ञानिक हैं जो इस कार्य को करते हैं। आज मैं इस मंच से दो तीन बड़ी आवश्यक बातों को आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ कि सब कुछ सभी ने कहा है, और एनवायरनमेंट पे भी बात हुई है, लेकिन इतने बड़े देश और इतने बड़े दुनिया में फूड सिक्योरिटी और फ्रूट न्यूट्रिशन के बारे में किसी ने नहीं कहा। मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए, इतनी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी एक विषय है, कि जिसे हमें 2 से 3 वक्त का भोजन इस आवाम को देना है। आज साइंस की जो ब्लेंडिंग हुई है इस विषय के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति की है, और साइंस की ब्लेंडिंग के साथ साथ जहां किसी समय में आज से 30 वर्ष पहले 1 किलो बीज बो के केवल 4 किलो निकलता था, आज साइंस की ब्लेंडिंग के साथ 1 किलो से 25 किलो धान और गेहूं पैदा हो रही है। इसमें साइंस की एक बहुत बड़ा कार्य है जिसके तहत हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के साथ बढ़ती आबादी को मीट आउट करने के लिए जो चीज़ें पैदा होनी है वो सुचारू रूप से होए जा रही है। आज जेनेटिक का जमाना है, जेनेटिक साइंस का जमाना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जमाना है, कि एक बीज में दूसरे बीज का जीन डाल के हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। जैसा कि उदाहरण है, कॉटन एक ऐसी फसल थी जिसमें हजारों किसानों ने आत्महत्या की, जिस पे एक कीड़ा लगता था और उस कीड़े से पूरी फसल तबाह हो जाती थी। आंध्र, महाराष्ट्र, ये ऐसे किसान थे कि जिसमें कॉटन की फसल को तबाह करने के लिए एक कीड़ा बहुत था। अनेकों प्रकार की दवाइयां इस्तेमाल हुई, लेकिन साइंस की ब्लेंडिंग से उस कीड़े को मारने के लिए एक ऐसे जीन का आविष्कार किया गया जो कॉटन के सीड के बीच में डाला गया जिससे कि वो बीज कीड़े मुक्त हो गया। अगर वो कीड़ा उस बीज को खाएगा या उस फसल को खाएगा उसकी अपनी मृत्यु हो जाएगी और फसल को नुकसान नहीं होगा। आज केवल हम पहले सोचते थे बासमती धान पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न पंजाब में होती है, आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा धान गोल्डन राइस जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा आविष्कार है जो कहीं भी आने वाले समय में होगा। उसी तरह अनेकों ऐसी फसलें हैं जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंस की ब्लेंडिंग के साथ मानव सेवा के लिए पैदा किया गया है और इसी विषय पे इसी कार्यों पे हम काम करते हैं। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जैसे सुबह भी पहले सेशन में एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे हुआ, क्लाइमेट चेंज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुनिया भर पे इस पे चर्चा हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव या प्रभाव अच्छे या बुरे हमारे रोजमर्रा के जीवन में पड़ने वाले हैं कि पहाड़ों में गर्मी है और गर्मी में जो फसलें पैदा होती थी वो अब उनका दायरा संकुचित होता जा रहा है। इस तरह से केवल विषय पे चर्चा करना बहुत कुछ नहीं है, वैज्ञानिक का काम है उसको कम करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए हमें कार्य करना है। जैसे मैं जिस प्रदेश से आता हूँ उस प्रदेश की एक प्रमुख फसल है सेब, लगभग आधी आबादी इसी फसल को उगाती है जो उनकी लाइवलीहुड है, उनको जीवन व्यापन के लिए वो फसल उगानी पड़ती है, अन्यथा पहाड़ों में दूसरी कोई फसल नहीं होती। इस विषय में हमारा विश्वविद्यालय बहुत काम करता है जिससे लगभग प्रदेश को अकेले 10,000 करोड़ रुपया का पैसा मिलता है जिससे लाइवलीहुड चलती है, जिससे स्टेट चलती है और इसी एक फसल के माध्यम से पूरा प्रदेश एक प्रॉस्परस प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें भी इतने अनुसंधान हुआ है इस एक फसल के ऊपर कि लोग अब इसको कहीं भी उगा सकते, जितना भी क्लाइमेट बदल जाए हमारे पास ऐसी किस्में इजाज की है जिसको कि आने वाले समय में क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ता है उससे पहले ही उसकी तैयारी कर ली जा चुकी है कि इसके लिए हमें ऐसा करना है ताकि लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि हमारा ये भी बेटर सोसाइटी के लिए एक कार्य है कि लोग जो हम लोगों को किसी नज़र से देखते हैं उसके लिए हम कार्य करें। इस विषय में एग्रीकल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसको हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदुस्तान अनेकों कल्चर का देश है, बहुत सारे कल्चर हैं, एक कल्चर अगर कम भी हो जाए कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन एक कल्चर ऐसा है अगर ये कम हो जाए तो हो सकता है पूरी प्रोग्रेस और पूरी जो उन्नति है देश की रुक जाए, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कभी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि इसके पीछे ही हम सब लोग जिंदा है, इसी के पीछे कार्य करते हैं। और महात्मा गांधी ने कहा था कि कुछ भी करने के लिए अपने आप को उससे प्रतिन्योछार करना है, जो भी हमें कर्म करने के लिए इस दुनिया में भेजा है उसको पूरी तरह से हम करें और वही हमारा कर्म है, जिस कर्म के लिए हम पैदा हुए हैं, जिस कर्म के वास्ते हम जिस दिशा में हमें भेजा गया है उसमें हमें पूरी तरह से कार्य करना बहुत आवश्यक है और तभी हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अच्छा काम इस सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। कल भी एक सेशन में मैंने सुना था कि गुड गवर्नेंस का एजुकेशन से क्या लिंक है। गुड गवर्नेंस ही हमारी कर्म भूमि है जो हमें अच्छा काम करना चाहिए। हम अनेकों पदों पर बैठते हैं, हर एक पद की अपनी अहमियत है, उसमें गुड गवर्नेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। केवल एजुकेशन का जो आज के संदर्भ में जो मतलब निकाला जा रहा है वो केवल एक बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम आप अक्सर अनेकों पेरेंट्स यहाँ भी होंगे, हम अपने बच्चों को केवल एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि जिसमें बच्चा अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज के लिए हम एजुकेशन दे रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे को अपने देश के बच्चों को अपने देश के लिए भी तैयार करना चाहिए। अनेकों बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर जाते हैं और जिसमें के केवल एजुकेशन में वैल्यूज का जो महत्व था वो कम होता जा रहा है। हम केवल एक बिजनेस के वास्ते, एक पैसा कमाई के वास्ते एजुकेशन की तरफ मुड़ गए हैं, जो इस देश के लिए, इस देश के कल्चर के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। केवल हम एक दौड़ में लगे हैं कि हमें हमारा बच्चा अच्छी तरह से अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में काम करे, अच्छा पैसा कमाए, उसका मुझे लगता है एजुकेशन से कोई अभिप्राय नहीं है। केवल गुड गवर्नेंस के लिए मैं कहूँगा कि अगर जैसी मेरी पोजीशन है, मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हैं, अगर मैं अच्छे से काम ना करूँ तो वो लोग सभी इफेक्ट होते हैं। मुझे सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, उस सुधारने के लिए सबसे पहले आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको देख रहा है, आप अकेले हैं, 99 आपकी तरफ देख रहे हैं, किसी आशा के साथ और किसी अपने कार्यों के प्रति, अपने किसी उद्देश्यों के प्रति आपको देख रहे हैं। आपको पॉजिटिव थिंकिंग से काम करना बहुत जरूरी है, इस तरह ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सबका साथ बहुत जरूरी है और अपने जब आप हायर पोजीशन पे बैठते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये तो छोड़ लेना पड़ता है, इसको तो आपको छोड़ लें तो भी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छी गवर्नेंस हो सकती है और अच्छा शिक्षा का स्तर उठ सकता है। अनेकों बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हमारा एक अलग यूनिक तरह, एक यूनिक टाइप का विश्वविद्यालय है जहाँ बीएससी की डिग्री भी होती है, एमएससी की भी होती है, पीएचडी की भी होती है। ये अलग तरह का विश्वविद्यालय है। मैं आपको सूचित कर दूँ, ये भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पे बागवानी और वानिकी पे अनुसंधान और शिक्षा का विस्तार हुआ था। इस एक विश्वविद्यालय में, जो एशिया का भी पहला है और दुनिया का दूसरा विश्वविद्यालय था, जिसमें सबसे सर्वप्रथम फलों, फूलों और सब्जियों पे कार्य अनुसंधान शुरू हुआ था, और एग्रोफॉरेस्ट्री, जो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, उस पे कार्य शुरू हुआ था। इस विश्वविद्यालय की देश और विदेश में बहुत नाम कमाया है, बहुत उपलब्धियां हैं, वहाँ के बच्चे शायद ही कहाँ ना होंगे और हर प्रकार की उनके पास जॉब्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, आर्मी में है, उस तरह से बच्चे पढ़ते रहते हैं। वो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जैसा आपका माउंट आबू, बिल्कुल शांत, वहाँ कुछ भी किसी भी तरह का दोष प्रलोभ नहीं है, अनेकों हजारों बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन का माहौल है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एजुकेशन बहुत चीप है, बहुत सस्ती एजुकेशन है, और बच्चे आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं और पढ़ना ही उनका उद्देश्य है। उस उद्देश्यों को अगर हम, उनके उद्देश्यों को पूरा करें, वो एक अच्छे टीचर का काम है, वही टीचर का काम हम पूरा कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, या अच्छे जीवन के लिए तीन चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है। एक है फेथ, आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास, एक ऐसा विश्वास पैदा करना है अपने लोगों के बीच में कि जो आप करें वो अपनाएं, उस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ट्रस्ट, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। इस पे मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि आप छोटे बच्चे को हवा में उछाल देते हैं, बच्चा हंसता है, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसको विश्वास है कि मुझे पकड़ने वाला कोई नीचे है। तो इस तरह से हमें हर बच्चे को इस विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है कि उनको विश्वास होना चाहिए कि मेरा जो टीचर है, जो मेरा जो अध्यापक है मेरे पीछे है, वो मुझे अच्छी राह दिखाएगा और उस राह के साथ वो बच्चा आगे बढ़ता है। तीसरा है होप। हर आदमी को, हर नए विद्यार्थी को, अपने आप के बच्चों को एक होप होती है अपने टीचर से, अपने एक अध्यापक से, कि मुझे इस अध्यापक से ये उम्मीद है और अध्यापक को अपने विद्यार्थी से भी उम्मीद होती है कि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे अच्छा इंसान बनना है। जहां तक आध्यात्मिकता का सवाल है, मैंने बहुत कम समय इस साइड को बिताया है, क्योंकि पहले 12 साल अपनी पढ़ाई की, पहले बीएससी की, फिर एमएससी की, फिर पीएचडी किया, 12 साल लग गए, फिर जॉब में आए, जॉब में आने के बाद अनुसंधान में चले गए, टीचिंग प्रोफेशन में चले गए। इस तरफ अभी वक्त नहीं मिला है कि हम इस तरफ को भी आए, पर मेरा एक विश्वास है, एक कोई अंतर्यामी जरूर है जो हमारे पीछे चलता है, जो हमें शक्ति देता है, और इस शक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे हर कदम उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्ति रहती है जो हमें आगे बढ़ने पर प्रेरित करती है। लेकिन मैं यथार्थ को विश्वास करता हूं, मैं केवल अगर भगवान की बात करें या इस वायुमंडल की बात करें तो मैं सूर्य भगवान को जरूर फॉलो करता हूं या उनकी पूजा करता हूं, क्योंकि वो साक्षात नजर आते हैं और वो एक ऐसी शक्ति है कि जो आपको अपनी शक्ति प्रदान करती है। ये जो संसार बना है, ये जो सब पेड़ पौधे हैं, वायुमंडल है, सब कुछ है, ये इस सूर्य की शक्ति से है। जिस दिन सूर्य की किरणें नहीं होगी, सूर्य की शक्ति नहीं होगी, उस दिन ये वनस्पति बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी और हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। मैं इस भगवान को जरूर पूछता हूं कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें रोज दिन में सुबह और शाम तक मिलती है और ये हमें शक्ति प्रदान करती रहती है और हमें एहसास दिलाती रहती है कि जिस तरह से मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, आप भी आने वाली जो भी जनरेशन है उनको शक्ति प्रदान कीजिए। और उसको अगर आप पानी चढ़ाएंगे तो पृथ्वी माँ की भी सेवा करते हैं और ये पृथ्वी माँ जहाँ ये पेड़ पौधे पैदा होते हैं उसकी भी एक स्तुति हो जाती है। मेरा केवल इतना ही विश्वास है कि और जब तक मुझे एक कर्म करने, जो अपनी एक पोजीशन के हिसाब से कर्म करने हैं, वो मैं तब तक करता रहूंगा जब तक वो है, और उसके बाद हो सकता है कि इस तरफ मोटिवेट हूं इस दिशा में। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि कल ही दादी माँ ने हमें सम्मानित भी किया और लोग दूर दूर से कई कई सालों तक इंतजार करते हैं ऐसे क्षण की। केवल मुझे एक घंटा की उपस्थिति से ही यहाँ इतना सम्मान मिला है। मैं इस संस्था का बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ सिस्टर शिवानी का। मैंने ब्रह्म कुमारी जो ये आइडियोलॉजी है, ये जो टीवी पे उनका प्रोग्राम आता है आस्था चैनल में, उसको मैं अक्सर घर में देखता हूँ। उससे धीरे धीरे सुरेश ओबराय जी उसकी कंपेयरिंग करते हैं और धीरे धीरे इस आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा जानने का अवसर मिला। और जब मुझे इन्विटेशन दिया सोलन की संस्था में, सुषमा बहन जी है, उन्होंने जब मुझे ज्वाइन किया था तब आए थे, तो उन्होंने जरूर कहा था कि आपको हम कभी माउंट आबू ले जाएंगे, तो इस अवसर पे उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया। यहाँ के भाई मित्रंजा जी का एक इनविटेशन लेटर लाए थे। मुझे एक दिल में आया है कि ये मौका आ गया है इस संस्था में जाने का, तो आज मैं यहाँ हूँ। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ और आपका अभिनंदन हूँ। इस संस्था का मैं हमेशा प्रशंसक रहूंगा कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ बोलने का मौका मिला। हमारी लैंग्वेज में अभी आध्यात्मिकता नहीं आई है, हम दूसरे सब्जेक्ट के लोग हैं, साइंस के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, तो जो भी गलती होगी माफी चाहता हूँ और आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आध्यात्मिकता तो आपने सीख ही ली है और वो है ओम शांति, क्योंकि ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हो, जो आपने स्वीकार किया है। इसलिए सबसे पहले आध्यात्मिकता तो आपने सीख ही ली है और आप ये लेकर के ही जा रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर केपी मिश्रा जी, वाइस चांसलर नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी अलाहाबाद से आए हैं। इस विषय में वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
ओम शांति। मंच पर आसीन इस वैलिडिटी फंक्शन की अध्यक्षता कर रहे राजयोगी करुणा जी, मंच पर आसीन सभी विद्वान, प्रोफेसर पाठक, प्रोफेसर गुलियानी, प्रोफेसर ठाकुर, सीमा जी, जयश्री जी, बहन सीमा जी, रथ जी, और इस सभा में बैठे सभी वाइस चांसलर बंधु, मेहमान, देवियों और सज्जनों, मैं इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रति समर्पित शिक्षा में मूल्य एवं आध्यात्मिकता सम्मेलन में शरीक होकर अत्यंत खुशी महसूस कर रहा हूं। और एक वैज्ञानिक के पेशे में होने के नाते काफी उत्साह भी महसूस कर रहा हूं। कुछ चंद बातें आपसे संक्षिप्त समय में करना है। इसके पहले कि मैं अपनी बात आप तक कहूं, मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि अक्सर वैलिडिटी फंक्शन में हम केवल फंक्शन में पहुंचते हैं और फिर चले जाते हैं और कुछ उसकी झलक देखते हैं। मैं यहां पर अब 3 दिन से यहां की सारी गतिविधियों को मैंने देखा और बड़ी गहन मन से मैंने देखा कि ब्रह्मा कुमारियों ने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को स्थापित कर इस जगत में समाज के प्रति एक बहुत बड़ा दायित्व निभाया है। मैं आप सभी भाई बहनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप उनके सम्मान में मेरे साथ उनके प्रति आदर के भाव। एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं, यहां मंच पर बैठे मैं कुछ मन विभोर हो गया जब कुमारी तनिषा ने सत्यम शिवम सुंदरम का नृत्य पेश किया। मैं आप सभी भाई बहनों से यह भी कहूंगा कि उस कुमारी बालिका के लिए एक बार पुनः अपने करतौली से उसके प्रति अपने भाव व्यक्त करें। विषय जब सुमन जी ने कल मुझसे कहा कि मेरा सेशन आपने इस प्रोग्राम तालिका में देखा होगा कि सेशन 9 था, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप वैलिडिटी फंक्शन में अपनी बात कहें, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। और इस संस्था के मृत्युंजय जी से जब हमारी बातचीत कल हुई थी तो मैंने कई बातें हृदय की कही थी। आपसे भी कह रहा हूं कि शिक्षा में विज्ञान द्वारा मूल्यों और आध्यात्मिकता से निश्चय ही समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। मेरी दृढ़ मान्यता है, और यहां पर अभी मंच से जो बातें कही गई, विज्ञान की अपनी एक विधा है, और मैंने थोड़ा सा लाइट को कम कर देंगे क्या मंच पर,
अपनी बात को थोड़ा सा मैं यहां संक्षेप में कह रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें मैंने इस चित्र में वहां दिया है, आप सब जो अधिक जानकारी जानना चाहेंगे वहां देख सकते हैं। हम इस युग के एक बड़े महत्वपूर्ण अवसर पर अवतरित हैं मनुष्य के रूप में। शायद ये अवसर बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा। व्यवसाय से मैं नाभिकीय वैज्ञानिक हूं और अब शिक्षा के क्षेत्र में नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं। उस नाते मैं नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों और फैकल्टीज और विद्यार्थियों की तरफ से आप सभी लोगों को ग्रीटिंग्स लेकर आया हूं। और जो बात आपसे कहना चाहते हैं, विज्ञान की विधि एक नए तरह की है और नए तरह की दिखती है। हम सब वैज्ञानिक जब प्रयोगशाला में कार्य करते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम भी मनुष्य हैं। विज्ञान कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं है, विज्ञान हमारे बीच की चीज है। और हम सब जिनको एक सु अवसर मिला हुआ है कि हम विज्ञान को पेशे में जी रहे हैं, वो ये खूब बाखूबी जानते हैं और बार बार अपने से प्रश्न करते हैं कि क्या जो हम विज्ञान की शोध कर रहे हैं वो मानव के लिए कल्याणकारी है, कल समाज को वो लाभ देगा, क्या ऐसी चीज हम कुछ खोज कर रहे हैं जो किसी बगैर जानी हुई बात को जान सकता है, या समाज में हम कोई नई दिशा दे पाएंगे। बहुत धन्यवाद। नई दिशा दे पाएंगे। तो शुरू में जिस दिन यहां रिसेप्शन हुआ था, दादी रतन मोहिनी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि विज्ञान ने हमें बहुत सुख के साधन दिए हैं, विज्ञान ने हमको सहसा काफी अच्छा जीवन बिताने के लिए अवसर प्रदान कर दिया है, लेकिन विज्ञान ने ही हमको कहीं न कहीं मनुष्य से दानव की ओर जाने के लिए एक आचरण सा प्रस्तुत कर रहा है। मुझे वो बात बहुत घर कर गई। ऐसा मैं महसूस करता हूं कि विज्ञान सर्वथा कल्याणकारी है, और अगर विज्ञान में हम मूल्यों का समावेश कर लें तो निश्चय ही इस दुनिया को हम बदल सकते हैं, निश्चय ही इस समाज को बदल सकते हैं। और मैं आपको ये बात कुछ अधिकारपूर्वक कह रहा हूं कि 16वीं शताब्दी के आसपास, और उसको आप वहां चित्र में देख सकते हैं, पूरी दुनिया की एक ऐसी धारणा थी, पूरी दुनिया में ये सोच थी, वर्ल्ड थॉट था कि देयर इज ए डिवाइन पावर। पूरी दुनिया में, मैं किसी धर्म किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप वहां देखेंगे कि मुश्किल से 4 या 5 शताब्दी पहले से आज हम कितने बदल गए हैं कि आज हमें बार बार कहना पड़ रहा है कि कोई दिव्य शक्ति है उसको जानने की कोशिश करें, कोई दिव्य शक्ति है जिससे हमारा नाता होना चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप सभी का मैं ध्यान लेना चाहूंगा कि जब नई नई खोजें हमने दुनिया में की, पिछली खास करके 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो हमारा मन हमसे कहने लगा कि हम उन्हीं चीजों पर विश्वास करेंगे जिन चीजों को जांच परख कर जान लेंगे। एक नई चीज शुरू हुई थी, हमने जांचने परखने की एक जो प्रवृत्ति पैदा हुई वो विज्ञान की देन है, और इस विज्ञान ने हमको एक बेहतर इंसान बनाया, इसमें दो राय नहीं है। और अभी आप बहन यहां मंच से बहुत अच्छी बात कह रही थी कि हम यहां बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन इसका प्रसारण कहीं अमेरिका में और ब्रिटेन में और दूसरे देशों में भी सीधे हो रहा है। हमने विज्ञान में बड़ी उन्नतियां की हैं जो चमत्कारिक हैं, जो अद्भुत हैं, अनोखी हैं, लेकिन विज्ञान में जो वैल्यूज और इथिक्स की महत्ता है उसको बगैर जाने हुए हम आगे विकास नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा मकसद है कि हम और कुछ दुनिया को दे पाएंगे विज्ञान के द्वारा, वो पूरा नहीं होगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विज्ञान की विधा सत्य के खोज की विधा है, और अध्यात्म की भी विधा सत्य की खोज की विधा है। इन दोनों में बड़ी समानता है, और स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों एक दूसरे के साथी बनकर इस समाज को दिशा दे सकते हैं। हमें थोड़ी जो एक गैप क्रिएट हो गया है कि विज्ञान की विधा और अध्यात्म की विधा में जो एक गैप है, उसकी विधि में, उसमें कहीं न कहीं कुछ हमें चिंतन करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि ब्रह्मकुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय ने एक अनोखा कार्य किया है, जो ऐसा मंच बनाया है जहां वैज्ञानिक भी, शिक्षक भी, दार्शनिक भी और आध्यात्मिक लोग भी साथ में बात कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि यहां इस मंच से हम सब लोगों को साथ में कई तरह के विचारों का एक मिश्रण देख रहे हैं। मैंने वहां पर एक उक्ति लिखी है, आप लोग लास्ट में उसको देखिएगा, ये शायद हमारा चिन्ह वहां पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन एक लास्ट में मैंने कहा है कंक्लूजन दैट द साइंस एंड स्पिरिचुअली, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्लैंक हुआ था इस सेंचुरी के, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा था कि साइंस एंड स्पिरिचुअली बिलोंग टू वन अनदर एंड साइंस एलोन कैन नॉट गिव एनी वन द फुल पिक्चर ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी। सभी ने उसको स्वीकार कर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दूसरी पंक्ति पर आप देखेंगे कि स्पिरिचुअल मैटर्स थ्रू द एजेस हैव डिवाइज्ड मेथड्स डिफरेंट टू दोज ऑफ साइंस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ग्रेट मिस्ट्रीज ऑफ इमर्जिंग देमसेल्व्स इन इट, मेकिंग यूज ऑफ साइलेंस, स्टिलनेस, सॉलिट्यूड फॉर एग्जाम्पल। देयरफॉर हमारी केवल विधा में थोड़ा फर्क है, और वैज्ञानिक के रूप में मैं जानता हूं आज प्रश्न कुछ हमारे सामने हैं कि हम कैसे, हाँ ओके थैंक यू, आज हम कहां हमारी जानकारी होनी है। हम लाइफ के बारे में ही बहुत सारी चीजें नहीं जानते, कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई ये वैज्ञानिकों के सामने प्रश्न है। यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बहुत जबरदस्त शोध हो रहा है, लेकिन सेंट्रल पॉइंट जो हमें जानना है कि हम कैसे अपने थीम को इस तरह से बनाएं कि ह्यूमैनिटी को नया नॉलेज दे दें। मैं इन तथ्यों पर अधिक नहीं जाता, समय की सीमा है, लेकिन एक दो बात आपसे कहते चल रहा हूं कि बहुत थोड़े समय के पहले हम ऐसा मानते थे कि जितनी चीजें हमारे समक्ष हैं वो सब एक वाइटल फोर्स से गवर्न होती हैं, लाइफ भी एक वाइटल फोर्स से, एक दिव्य शक्ति से चलती है, ये हम सभी मानते थे। लेकिन ये 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन ने एक थियरी दिया, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसने हमारे मत को बदल दिया। आज जो बार बार हमें कहना पड़ रहा है कि इसने हमारे परसेप्शन को बदल दिया, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्पिरिचुअलिज्म में समाहित हैं, हमें उसके खोजने की जरूरत है, हमें इस बात की जरूरत है। मैंने एक बात वहां पर थोड़ी सी आप लोगों का ध्यान लेना चाहा था कि आज दुनिया में हम जानते हैं कि जितने बड़े वैज्ञानिक हैं इस वक्त के, कि केवल 4.5% मैटर हम अकाउंट कर पाए हैं जिससे पूरा वर्ल्ड बना हुआ है. 75% ऑफ द मैटर इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, जिसके बारे में हम जरा भी जानकारी हमको नहीं है, हम जानने में लगे हुए हैं. और उसी तरह से जो हमने फील्ड क्रिएट हुआ है, मैटर क्रिएट हुआ, कहां से क्रिएट हो गया मैटर? इस मैटर के क्रिएट होने के लिए आपने पीछे अखबारों में देखा होगा गॉड पार्टिकल की बात आ गई है, कहा कि वो जो मैटर बनता है स्पेस में वो उस गॉड पार्टिकल के माध्यम से, और उस पर अभी नोबेल प्राइज भी दी गई. लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं बिफोर आई टेक माई सीट, कि कॉन्शियसनेस इज एक्सेप्टेड टू बी फंडामेंटल टू दिस यूनिवर्स. चेतना, चेतना के बारे में बहुत शोध हो रहा है, और उस चेतना को जानने के लिए वैज्ञानिक भी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं. इस मंच से और दावे से मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मा कुमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन और ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से शायद इस चेतना के बारे में अधिक जानकारी करने की जरूरत है, शायद हमें और उसके इनर चीजों को जानने की जरूरत है, और हम कर सकते हैं. कल ही मैं मृत्युंजय भाई से बात कह रहा था कि इस तरह के शोध करने की आवश्यकता है, और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कैन सिनर्जाइज द होल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, और हम एक नई सोसाइटी बना पाएंगे. हम शायद ऐसा जीवन बना लेंगे जिसकी आज कल्पना भी नहीं हो सकती. तो इसलिए मैं इस मंच से अपनी बात, ये बात कह करके सपोर्ट करके कह रहा हूं कि समाज को अगर नई दिशा देना है और हमें मानव के रूप में विकास करना है तो हमें विज्ञान और आध्यात्म का सम्मिश्रण करके शोध करना होगा, और उसकी तमाम छिपी हुई बातों को जानना होगा. हम सभी वैज्ञानिकों की जिम्मेवारी है कि इस बारे में गहराई से कुछ शोध करें और उसको आपके सामने प्रकाशमान करें. आप सभी श्रोतागणों का, जिन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. और एक बार फिर मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपके बीच हमें यहां आने का और आपसे कुछ बातचीत करने का अवसर दिया. बहुत बहुत धन्यवाद.
बहुत बहुत धन्यवाद. समय की सीमा के साथ हम चलेंगे. अभी मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर विनय भाई पाठक, वाइस चांसलर, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा.
मंच पर बैठे हुए विद्वज्जन और मंच के इतर बैठे हुए विद्वज्जनों को, सभी को मेरा नमन. दीदी ने पहले ही वैल्यू एजुकेशन में समय की सीमा का ध्यान रखने के लिए बोला है, और मैं जरूर यह प्रयत्न करूंगा कि अपनी समय सीमा में ही अपनी बातों को निवेदित कर सकूं आप लोगों के समक्ष. ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हमारे विश्वविद्यालय का नाता पिछले वर्ष जुड़ा था. पिछले वर्ष भी मैं ऐसी कॉन्फ्रेंस में आया था, और हम लोगों ने तब से मिलकर एक जर्नी, एक यात्रा प्रारंभ की, जिसमें हमने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज स्पिरिचुअलिटी और वैल्यू एजुकेशन पे पूरे राजस्थान में प्रचारित और प्रसारित किया, और आप लोगों के समक्ष यह बात प्रस्तुत करके मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे मुकेश जी ने और मृत्युंजय भाई की मदद से हमें पहले वर्ष इस कोर्स को प्रचारित एवं प्रसारित करने में काफ़ी सफलता मिली, और यह कोर्स बहुत अच्छी तरह से राजस्थान में चला है. प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अपनी एक संरचना है और अपना एक महत्व है. उन्होंने, विश्वविद्यालय ने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से रखा है, और इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस हैं उनके लिए मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि वह इस तरह की संगोष्ठियां और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे एक 3 दिन की कार्यशाला, जो कि इस बार भी शिक्षा में मूल्य आध्यात्मिकता पे चिंतन मनन करने के लिए यहाँ के लोग नहीं, केवल जो इस मत और मतांतर से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि इतर भी जो लोग हैं उनको भी बुलाकर एक चिंतन मनन होता है, और एक सचमुच एक इकोसिस्टम डेवलप होता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरे राष्ट्र में कि इस तरह की बातें जो हैं वो आगे रखनी चाहिए। मैं शिक्षाविद के नाते बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। इन प्रश्नों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोगों में से किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ये प्रश्न यक्ष की तरीके से हम लोग के सामने खड़े हुए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना हम में से सभी व्यक्तियों का काम है और हम में सभी व्यक्तियों को इस दिशा में बढ़ना चाहिए। शिक्षा का जो मूल्य आधार था और शिक्षा का जो हम लोगों की भारतीय मनीषा में उपनिषदों द्वारा कहा गया कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो विमुक्त करे व्यक्ति को, और विद्या का एक जो भारतीय मनीषा की सोच थी उस विद्या से और आज की शिक्षा से बहुत डेविएशन और बहुत अंतर हम लोगों के समक्ष आके खड़ा हुआ है। आज जब भी हम अपने समाज को देखते हैं तो हमारे समाज में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई बहुत सारी जो बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं, मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं हर संगोष्ठी में, हर उसमें, कि आपको जो ये कुरीतियां दिखाई पड़ रही हैं ये वैसी ही हैं जैसे कि किसी व्यक्ति के देह में, शरीर में टेम्परेचर हो जाता है, तो टेम्परेचर होने का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ बॉडी का सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली, इसलिए कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। और मेरे को लगता है कि जो समाज की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिखाई पड़ रही हैं आज में, उसमें मुझे लगता है कि शिक्षा में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है और शिक्षा कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है, जिसके कारण हम समाज की वैल्यूज और समाज की जो एजुकेशन है उससे ये सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे। और सचमुच जो हमने शिक्षा का मॉडल बनाया मैकॉले के एजुकेशन के बाद इन 50 वर्षों में, और जो हम लोगों ने डिग्री बांटने का काम किया, हो सकता है कि विज्ञान के नाते हमारे पास पीएचडी होल्डर्स बहुत सारे हो गए हों, हो सकता है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत हो गए हों, हो सकता है हमारे पास ग्रेजुएट्स बहुत हो गए हों, लेकिन ये जरूर हुआ है कि इन 50-60 वर्षों की उसमें हमारे पास मूल्य आधारित व्यक्ति कम हो गए हैं, मूल्यों पर जीने वाले लोग कम हो गए हैं, संस्कार के सहित जीवन यापन करने वाले लोग कम हो गए हैं। हो सकता है मर्सिडीज बेंज और मर्सिडीज वाले लोग ज्यादा हो गए हों, लेकिन शिक्षा और संस्कार वाले लोग कम हुए हैं। और ये प्रश्न बहुत विचारणीय प्रश्न है कि हम अगर विद्या का, एजुकेशन का, शिक्षा का यही मॉडल लेकर चलेंगे तो जो उसका बाय प्रोडक्ट और आउट प्रोडक्ट है वो सचमुच क्या इस रूप में आएगा या नहीं आएगा। अब इस देश में जब ये बहुत बड़ी एक चर्चा चल रही है कि हमारे पास यूथ का डिविडेंड सबसे ज्यादा है इस देश में, और सचमुच उस यूथ के डिविडेंड्स के पास हमारे पास कम से कम 23 स्टेट्स ऐसे हैं जो रेड कॉरिडोर में हैं, जहां पर माओइस्ट और नक्सलाइट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और उस यूथ को हमेशा ये लगता है कि यह जो एक समाज का स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, वो हमें कुछ नहीं दे रहा है। और सचमुच, सच मानिए, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के नाते जब मैं लोगों से मिलता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, तो मुझे ऐसा सचमुच लगता है कि आज बीटेक कंप्यूटर साइंस और बीटेक इलेक्ट्रिकल को 5000 की नौकरी और बीटेक एग्रीकल्चर को 3000 की या 4000 की नौकरी, और हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं इलेक्ट्रीशियंस और गार्डनर्स, और इनको हम 10000 रुपए में भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और सचमुच हमने डिग्री बांटने के समय हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो संस्कार, वैल्यूज और स्किल्स और हार्डवर्क की जो सोसाइटी के अंदर हमें उनकी इंपॉर्टेंस देनी थी, हम सचमुच उन डिग्री बांटने में कहीं ना कहीं भूल गए। और सचमुच इसका उत्तर यही है कि हमने जो संस्कार मूलक शिक्षा है, जो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन है, उसको हमने किसी भी कोर्स में नहीं डाला और हमने किसी भी कोर्स का कोई निर्माण नहीं किया। अब हम बिरला वॉल पुट्टी की तरीके से उसको पैचवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं वो वॉल पुट्टी की तरह डाल देते, चलो भाई आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा, वैल्यू एजुकेशन भी पढ़ लो भाई, अच्छा चलिए आप जो है ये कुछ वैल्यू के भी कोर्स कर लीजिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके का जो पैचवर्क है वो कुछ समाज को बहुत कोई अच्छी चीज देने वाला नहीं है, क्योंकि समाज को अच्छी चीज तो तभी देगा जब वैल्यू ओरिएंटेशन से हमारे कोर्स और सिलेबस निकलेंगे। अगर हमारे वैल्यू ओरिएंटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से बने हुए कोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो सो कॉल्ड सोर्सेज हैं, वो कोर्सेस नहीं निकले, तो हम हो सकता है कि मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर भी लें, जैसा कि अभी हमें लगता है कि हमने बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां हो गई और बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन साथ साथ ये भी हुआ है कि हैव और हैव नॉट्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है। जिनके पास खाने के लिए है और जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत बढ़ा है। हो सकता है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले लोग बहुत बढ़ गए हों, वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एक इंडिकेटर है, लेकिन बहुत सारे लोग भूखे भी मर रहे हैं और उनका डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसका मूल आधार यही है, हमारी शिक्षा, और शिक्षा में संस्कार और आध्यात्मिकता का ना होना, और इस विषय पर बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। शिक्षा के पूरे मॉडल को चेंज करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। कि यदि हम यही डिग्रीज बांटते गए और यही बीएससी एमएससी और पीएचडी लोगों को देते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत कोई हल देश की समस्याओं का नहीं निकल पाएगा, और खासकर देश से ज्यादा समाज की समस्याओं का कोई बहुत ज्यादा हल नहीं निकल पाएगा। समाज की समस्याओं के हल के लिए कहीं ना कहीं हम सबको एक गहन चिंतन मनन वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी पे करना पड़ेगा। आज जब एक रेलेवेंस की बात हो रही है कि साइंस और स्पिरिचुअलिज्म का ब्लेंडिंग हो, तो मैं आप लोगों के से छोटी सी बात एक निवेदित करना चाहता हूं कि जो प्राचीन भारतीय विज्ञान है और जो वेस्ट का विज्ञान है, जो पश्चिमी विज्ञान है, पश्चिमी विज्ञान और भारतीय आध्यात्मिकता का दोनों बड़ा अलग अलग स्टेटस है। क्योंकि जो विज्ञान है वो बाहर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है, जो आध्यात्मिकता है वो अंदर की तरफ देखने के लिए प्रेरित करती है। जो विज्ञान है वो बातों को तोड़ के समझता है, जिसको हम लोग एनालिसिस और सिंथेसिस करते हैं लैब में, हम पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिकता में हम समग्रता से जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। हम आध्यात्मिकता में जो भी चलता है आगे वो उसको जोड़ के समझने की कोशिश करता है, वो और चीजों को, प्रकृति को एक चीज मानता है, वहां पे प्रकृति को अलग अलग विभाजन करके समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए भारतीय मनीषा में जो भी विज्ञान बना और जो भी विज्ञान डेवलप हुआ वो अध्यात्म की से के साथ विज्ञान का डेवलप हुआ। और यूरोप में भी जो पहली बार विज्ञान के कोर्सेज रखे गए तो उसके साथ धर्म का भी चैप्टर था, लेकिन धीमे धीमे जब मटेरियल आपको प्राप्त करना है तो विज्ञान को एक दूसरी यात्रा करनी पड़ती है और अध्यात्म एक दूसरी यात्रा करता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूं कि जब भी हम साइंस और स्पिरिचुअलिज्म को ब्लेंड करें तो ऐसा लगता है कि विज्ञान एक अलग चीज है और स्पिरिचुअलिज्म एक अलग चीज है, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि अध्यात्म एक समग्रता है और उसमें से विज्ञान निकल सकता है। और जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाए और कोई भी चीज बनाए तो हम ये ध्यान रखें कि वह समाज की संरचना हो या हमारी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी हो या हमारे विज्ञान की थ्योरी हो, अगर वो अध्यात्म से निकले। और इसीलिए भारतीय मनीषा में जब भी बहुत से लोग जिन्होंने, जैसे कणाद ऋषि हुए जिनके नाम पे ये एटम था, और बहुत सारे वैद्य हुए और बहुत सारे लोग हुए, तो ज्यादातर वैज्ञानिक इस देश की मनीषा से, ज्यादातर वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, वो ज्यादातर साधु संत हुए, क्योंकि उन्होंने पहले आध्यात्मिकता को पहचाना और आध्यात्मिकता के बाद उसको ग्रो करने की कोशिश की। इसलिए आप यदि देखेंगे तो इस देश में जो मेडिकल एजुकेशन की परंपरा रही वो भी संतों द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित हुई। उसके बाद जो साइंस की एजुकेशन है उसके अंदर भी बहुत सारे संत लोग हुए, क्योंकि वो पहले अध्यात्म को समझते थे, जीवन के मूल्यों को समझते थे, और जीवन के मूल्यों के समझने के बाद उन्होंने जो शिक्षा का काम किया और शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जो है वो यूजीसी क्वालिफिकेशंस के टीचर रख रहे हैं, या जो है हम क्वालिफिकेशंस जिसको जीवन के बारे में पता है उसके टीचर्स रख रहे हैं। अगर हम यूजीसी क्वालिफिकेशन और नेट पीएचडी के टीचर्स रखते रहेंगे जिनको वैल्यू एजुकेशन या आध्यात्मिकता के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो मेरी समझ से डिग्री बांटने और स्टैंपिंग और फ्रैंकिंग के ज्यादा हम बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। और सचमुच यदि हम आध्यात्मिकता से निकले हुए लोगों से प्रेरणा लेंगे और समझेंगे कि इसने जीवन समझा कि नहीं समझा, हम हर टेस्ट में ये देखते हैं कि इस बच्चे के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने नंबर हैं, हम कहीं भी ये मापन नहीं कर पा रहे हैं कि इस व्यक्ति को जीवन जीने की कितनी कला आती है। हमारे पास कोई ऐसा यार्डस्टिक नहीं है। हमारे एजुकेशन वाले लोग हैं, अभी बहन ने भी बताया, मैं जब भी एजुकेशन की सारी थ्योरीज को पढ़ता हूं तो मुझे ये लगता है वो आईक्यू और अब थोड़ी थोड़ी बात ईक्यू की नापने की बात करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भूटान के लोगों ने जीएनपी नापने का काम किया है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ जीडीपी ग्रोथ, तो ऐसा कहीं भी कोई मापन हमारी किसी थ्योरीज में है नहीं कि हम उसको ये नाप के अपने अंडर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखें कि ये व्यक्ति जीवन कितना जीने जानता है, वो फिजिक्स कितने फॉर्मूले रटे हुए हैं, केमिस्ट्री कितना रटा हुआ है और कितने वो दो चार क्वेश्चन के जवाब दे पाता है कि नहीं, किसी भी इंटरव्यू में भी पूछते हैं हम जब सब बैठते हैं उस तरफ, हम यही सब पूछते रहते हैं आपको इसके बारे में कितना पता है और वो डार्विन की थ्योरी में क्या बोला गया और उसकी थ्योरी में क्या है और उसकी, हम कभी पूछते नहीं कि तुम जीवन कैसे जियोगे, तुम सचमुच जीवन जी सकते हो कि नहीं जी सकते हो, तुम समाज को साथ में लेकर चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो, तुम्हें समाज में लेकर चलने की इच्छा है कि नहीं है, और सचमुच हमने उसे कभी ट्रेनिंग भी नहीं दी। अगर आज हमारे यूथ में ऐसी ट्रेनिंग नहीं है तो इन सब के लिए जिम्मेदारी हम पुरानी पीढ़ी को ओढ़ना चाहिए, क्योंकि हम पुरानी पीढ़ी वालों ने कभी भी सिस्टमेटिक रूप से इस तरह की एजुकेशन और चीजों पर ध्यान नहीं दिया और इस तरह की एजुकेशन के चिंतन मनन पर भी नहीं ध्यान दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले वर्ष भी मैंने ऐसा कहा था और इस वर्ष भी मैं इसी उसके साथ कि हम लोग अपनी शिक्षा में कुछ चिंतन मनन करेंगे, हम सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उस चिंतन मनन के बाद कोई नया शिक्षा का मॉडल जो सचमुच आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी और वैल्यू एजुकेशन पे डिपेंडेंट हो ऐसा निकालेंगे और वही मॉडल जो है वो सचमुच इस देश की राष्ट्र की प्रकृति की और सृष्टि की जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशंस देने के लिए कृतबद्ध होगा और वही सॉल्यूशन निकाल पाएगा, उसमें इस संस्था का भी बहुत बड़ा रोल है। इनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं और इस बात के साथ कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भी इन्होंने किया है और जो आगे करेंगे वो सफल भी होंगे, और हिंदी में केवल सफलता नहीं है क्योंकि हिंदी बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और संस्कृत भी बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, और सफलता मतलब तो सक्सेस होता है, पर हमारे मनीषा में एक सुफलता की भी बात कही गई है कि हो सकता है कि पेड़ जो है वो फल के साथ हो पर अच्छा ना हो, तो इसलिए मैं उनकी सफलता और सुफलता कि वो अच्छा फल भी निकले ऐसी कामना करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सत्य बात आपने बताई। मैं भ्राता करुणा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे डॉक्टर विनय भाई पाठक का शॉल के द्वारा सम्मान करेंगे। उन्होंने बहुत सत्य बात बताई, सम्मान के बाद मैं भी उनके साथ एक बात जोड़ना चाहूंगी। धन्यवाद। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि डिग्रियां तो दे देते हैं, रियल घटना आपको बताना चाहूंगी। ताज होटल के अंदर हम सब मुंबई में जो हादसा हुआ आतंकवादियों का जानते हैं, तो उस समय हमने वो कहानी पढ़ी थी कि उसकी जो एचआर थी वो सिर्फ 24 साल की थी और वहां 600 का स्टाफ था। जब ये हादसा हुआ तो वहां पर बहुत सारे लोग होटल में रुके हुए थे और उस टाइम भोजन भी चल रहा था, तो वो बहन ने बहुत हल्के शब्दों में धीरे से आकर के कोई डर न जाए ऐसे वो हॉल के अंदर डाइनिंग हॉल में सबको बताया कि आप धीरे धीरे, जो युगल थे उनको कहा कि आप अलग अलग कोने में चले जाए, कभी भी ये हो सकता है, ऐसे धीरे धीरे कहने लगे। उनको पूछा कि आपने क्यों कहा दोनों को अलग होने के लिए, तो कहा कि हो सकता है कुछ भी हादसा हो तो दोनों माता पिता दोनों अलग है तो परिवार बिखर ना जाए, अगर किसी दोनों साथ रहे और शरीर छोड़ दिया तो परिवार बिखर जाएगा। फिर जो वहां के टेलीफोन ऑपरेटर्स थे वो भी सूचना देते रहे, जनरल मैनेजर था वो भी, तो ऐसे तो उनको पूछा कि आप उसके होटल के सारे खुफिया रास्ते थे देख सकते थे और जा सकते थे, तो कहा नहीं हम नहीं जाएंगे और नहीं गए, तो सबको वो पूरा हम जानते थे, तो कहा क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि वहां पर जो स्टाफ को रिक्रूट किया था, वहां पर जो रखा था, वहां पर जो रखे गए लोग थे वो कोई हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी रैंक टॉप थी, लेकिन वहां पर जो रखे थे वो मेजोरिटी सिंपल थे लोग, लेकिन उनके बैकग्राउंड को देखा गया था और छोटे छोटे शहरों से बुलाया गया था, उनके परिवार में वो कैसे हैं, उनका व्यवहार, वो कॉलेज स्कूल में कैसे रहे हुए हैं, ऐसे लोगों को जो स्पिरिचुअल थे, जो मूल्यनिष्ठ थे, उनके पास हाईफाई टॉप रैंक नहीं थी लेकिन ऐसे थे। फिर दूसरा कहा कि उनको जो भी काम करते थे वो उनको अप्रिशिएट करने वाले जो काम थे, तो ऐसा नहीं था कि उसके बाद इंक्रीमेंट दिया जाए या उनको अप्रिशिएशन किया जाए, लेकिन जब भी उनको कोई अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे स्टाफ को इकट्ठा किया जाता था और उनके ही सामने उनको अप्रिशिएट किया जाता था। टाटा ग्रुप का है, वहां की ये पॉलिसी रही थी और उनको अप्रिशिएट लेटर दिया जाता था और तुरंत ही उनका इंक्रीमेंट छोड़ दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि टॉप रैंक में है, लेकिन भाई जी ने जैसे बताया ऐसे स्पिरिचुअलिटी के साथ है तो वो जरूर ये करती है। अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारी अनुराधा बेन, जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से 40 साल से जुड़ी है। स्पिरिचुअलिटी विदाउट मेडिटेशन नहीं आती है, इसीलिए बीच बीच में आपको इसका प्रयोग किया जाता है और आपको इसका अनुभव करवाया जाता है कि आप जाकर के इसको कंटिन्यू करें। तो बीके अनुराधा बेन, आप मुंबई से आई है।
मंचासीन महानुभव, सभा में उपस्थित शिक्षाविदों को मेरा प्रणाम। जीवन में कई घटनाएं, समस्याएं और आपदाएं आती है। उन समस्याओं को, आपदाओं को पार करने के लिए आज तक हमारे अंतर्मन ने कई जवाब दिए हैं। उस समय ऊर्जा कहो, शक्ति कहो या आत्मा कहो, उसने ही रिप्लाई दिया है। पर आप जानते हो कि शक्तियों का अनुभव न होने के कारण, इन गुणों का अनुभव न होने के कारण, उसकी पूरी पहचान न होने के कारण आपको पूरा पूरा सहयोग नहीं मिला है। और यही ऊर्जा जो हमारे अंदर है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता और जिसको आप देख रहे हो उसका विनाश होता है, तो वो ऊर्जा क्या है, इन तीन दिनों में आपने विशेष उसका अभ्यास भी किया। आत्मा की असली पहचान मिली, परमात्मा के बारे में भी पहचान मिली। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हमारे संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इन्होंने पहला पाठ आत्मा का पक्का किया और बच्चों को भी यही पहला पाठ पक्का कराया। आप सभी शिक्षाविद हो, आप भी बच्चों को हमेशा, जब छोटे होते हैं आपके बच्चे, तो भी आपने पक्का कराया था कि स्क्वायर बुक में ये 25 बार लिखना, 1 2 3 4। इस प्रकार संस्था में भी बच्चों ने ये पहला पाठ पक्का किया कि मैं देह नहीं लेकिन देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये देह भी है और आत्मा भी है, पर देह को देखते हुए न देखना और मस्तक के बीच में विराजमान चैतन्य शक्ति को देखना, ये एक्सपीरियंस बाबा ने बहुत साल तक बच्चों को कराया। और ये अभ्यास करते करते हम इस अनुभव तक पहुंचे कि नाम रूप जाति देश काल इसको न देखते हुए आत्मा को देखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा में ही वो गुण और शक्तियां हैं और आत्मा ही सत चित आनंद स्वरूप है, आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, ये देह विनाशी है। देह और आत्मा या शरीर और आत्मा, शरीर प्रकृति के पांच तत्वों का बना हुआ है और आत्मा सात गुणों से बनी हुई है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। जब संबंधों की बात आती है तो हम कहते हैं मंदिर और मूर्ति, शीप और मोती, कि ऐसे आत्मा शरीर के अंदर विराजित है। तो अब हम उसका अनुभव कैसे करें, क्योंकि यही जीवन जीने की कला है। या कहते हैं कि हमारा अंतर जगत जिसमें बहुत कुछ है लेकिन बाहर उसको लाना, प्रैक्टिकल में उसको यूज करना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हमने समय पर भिन्न भिन्न शक्तियों को भी प्रयोग किया है लेकिन फिर भी हम कह नहीं पाते हैं, उसको समझा नहीं पाते हैं। वो विशिष्ट शक्तियां हमारे अंदर ही है और परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि वो आपके अंदर है, आपके भीतर में है और आप देख रहे हैं उसे बाहर भौतिक जगत में। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए ही अंतर आत्मा से बातें करना, आत्मा से बातें करना और परमात्मा से बातें करना, यही है मेडिटेशन। इसको राजयोग कहो या परमात्मा से बातचीत करना कहो। तो अब थोड़े क्षण के लिए हम उस अंतर जगत की यात्रा करेंगे। ये क्षण मेरे अपने हैं, आप सभी मेरे साथ हो और हम वो सुख और शांति का अनहद अनुभव करेंगे। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं एक चमकता सितारा हूं। सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक मैं आत्मा राजा हूं। ये कर्मेंद्रिया मेरी सेवक है और मैं उस पर संचालन करने वाला हूं। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र के साथ हूं। अब अपने आप को महसूस करें। इस विराट नाटक में मैं अपना अभिनय करने के लिए आई हूं। सभी पाठधारियों को देख रही हूं, सब अपना अच्छे से अच्छा अभिनय इस कर्म क्षेत्र पर कर रहे हैं। मेरा अभिनय भी बहुत ही सुंदर है। जब इन सब के अभिनय को देखती हूं तो मैं अनुभव कर रही हूं ये सभी परमात्मा की सुंदर रचना है। रचयिता ने इन सभी रचना के अंदर खूबी भरी हुई है और इन खूबियों को देखते हुए मैं मन ही मन मुस्कुराती हूं कि ये सभी आत्माएं मेरे भाई बहन है। सर्व आत्माएं सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हर एक के अभिनय को देखते हुए मैं ये महसूस करती हूं कि इस नाटक में ये सभी का यूनिक रोल है। कोई संगीतकार है, कोई चित्रकार है, कोई शिक्षाविद है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई कलाकार है। हर एक की अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग वो संसार में कर रहा है, जिससे हर मानव आत्मा खुशी की अनुभूति कर रहा है। ये कितना श्रेष्ठ संसार है। मैं उसमें सिर्फ सबका सुंदर अभिनय देखते हुए खुश रहूं और सभी को खुशी प्रदान करो। परमात्मा पिता सर्व आत्माओं के पिता है। आप में सूर्य चांद सितारों से भी पार उस घर में जा रही हूं जहां पर सर्वात्माओं का भी घर है और मेरे पिता का भी वही घर है। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो घर शांति का घर है, सुनहरे लाल रंग का प्रकाश वहां फैला हुआ है। परमात्मा के सानिध्य में मैं वहां अपने घर में आराम से स्थित हूं। मेरे मन में अनेक प्रकार के संकल्प हैं, कोई बोझ है, कोई प्रश्न है, परमात्मा से बातचीत कर रही हूं। सारी अपनी बातें पिता के सम्मुख रख रही हूं। अपनी सर्व बातें सुनाइए। परमात्मा से भिन्न भिन्न शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। पवित्रता का सागर उस सागर में मैं आत्मा पवित्रता का स्वरूप बनकर सारी अशुद्धियों को उनके हवाले कर रही हूं। शांति का सागर उनकी लहरों में लहराते हुए आत्मा शांति की अनुभूति कर रही है। प्यार का सागर उसके प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं अपने आप को उनका प्यारा सा बच्चा अनुभव कर रही हूं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं जो परमात्मा के सानिध्य में हूं। चारों तरफ शांति ही शांति है। सर्व किरणें मुझ आत्मा पर परमात्मा बिखेर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल हल्की चमकती हुई आत्मा परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ रही हूं। शांति के प्रकंपन आसपास के वातावरण में और सभी को शांति के प्रकंपन पहुंचा रही हूं। सर्वात्मय शांति का सुखद अनुभव कर रही है। अपनी आंखें खोलकर देखिए, कितनी न श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं। जहां से मैं आई हूं, मेरे लौकिक स्थान से, आज मैं कौन से स्थान पर हूं जहां पर मुझे परमात्मा का सानिध्य मिला। परमात्मा की पालना में बली हुए सभी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, भाई बहनों से मुलाकात हुई। और परमात्मा ने इतना सुंदर कर्तव्य जिन आत्माओं को सौंपा, उनके वरदानी बोल, वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। उन सभी हमारे आदरणीय दादियों को, उनके बोल को स्मृति में रखते हुए अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझ रही हूं। ये घड़ियों को यादगार रूप में अपने साथ लेकर जा रही हूं, और जब भी कोई ऐसा दिन आवे तो ये स्मृतियों को अपने मानस पटल पर ताजा करना और ये दिन कभी नहीं भुलाना कि मैंने यहां पर जो आध्यात्मिक बातों को समझा और अभी मैं उसको आगे स्वीकार करते करते अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ूंगा। ऐसे सद्विचारों के साथ प्रयाण करेंगे और जरूर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो लोकल स्थान है वहां पर मैं विशेष अभ्यास करूंगा। अब जो गीत सुनेंगे उसमें परमात्मा को याद करेंगे और परमात्मा एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जिस सत्ता को जानकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। ओम शांति।
शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण।
शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर वेद गुलियानी जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन विंग। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 15 साल से जुड़े हुए हैं और आप द वर्ल्ड रिन्यूअल के एडिटर हैं और ट्रांसलेशन भी हमारी जो वैल्यू एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी की जो बुक्स है उनकी भी किया हुआ है, तो वो हमको इस कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट बताएंगे।
ओम शांति। समय बहुत हो चुका है, रिपोर्ट पूरी पढ़ी जाए 10-12 मिनट लग जाएंगे, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए। जैसे थोड़ी देर पहले अपना पाठक जी ने बताया, विनय पाठक जी बात कह रहे थे कि हमारी पीढ़ी ने आने वाली जनरेशन्स को वो वैल्यूज़ वो मूल्य नहीं दिए और हमें इस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। एक ट्रेंड सी बन गई है, हम अक्सर कहते हैं अपने बारे में, जब हम मेरी उम्र तक आ गए तो बच्चों कहते जब मैं छोटा था, जब मैं, कभी हमने रियलाइज़ किया कि मेरे देखते देखते ये सब कैसे हो गया और क्यों हो गया। दो लाइनें कहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखी, मैं तो जागे होने का गुमान रखता था। अपने आप को हम बहुत समझदार इंटेलिजेंट और जागते हुए समझते हैं। मैं तो जागे होने का गुमान रखता था, मेरे सामने ही लुट गया जहां मेरा कैसे, देखते देखते सब कुछ खो बैठे। मैं तो जागे होने का गुमान रखता था, मेरे सामने ही लुट गया मेरा जहां कैसे। और वैल्यूज पर दो लाइनें हैं, चाहो तो जिंदगी को गुनाह होने से बचा लो, चाहो तो जिंदगी को गुनाह होने से बचा लो, है वक्त अभी बुझते दियों को फिर से जला लो। जो वैल्यूज खत्म हो रही हैं, चाहो तो जिंदगी को गुनाह होने से बचा लो, है वक्त अभी बुझते दियों को फिर से जला लो, गर्क ना हो जाए ये सब वक्त के अंधेरों में, गर्क ना हो जाए ये सब वक्त के अंधेरों में, दोजख न बन जाए जहां बशर को इंसान तो बना लो। दोजख नरक, दोजख न बन जाए जहां बशर, बशर इंसान आदमी, बशर को इंसान तो बना लो। मैं पूरी रिपोर्ट ना पढ़ते हुए स्ट्रेट अवे, क्योंकि विचार था कि कई आत्माओं ने अटेंड नहीं किए कुछ सेशंस, तो मैं सीधा आज की रिपोर्ट को, जैसे पार्लियामेंट में कई बार कहा जाता है बजट डीम्ड एज रेड, तो उसी तरह से आई होप दिस हाउस विल एक्सेप्ट द रिपोर्ट डीम्ड एज रेड। आई स्ट्रेट अवे कम टू द रेजोल्यूशन, आप सब की तरफ से है। वी द मेंबर्स ऑफ फैकल्टी and participants of the education conference from May 30 to June 3rd 2014 at the Brahma Kumaris Gyan Sarovar Mount Abu do hereby resolve to inculcate and promote amongst our learners and other members of the society a value-based education and spiritual elevation of all individuals to ensure a lasting peace, happiness, and bliss in human society across the world. ये हमारी proposal है, ये resolution हम इस house में रख रहे हैं. अगर आपको ये स्वीकार है, तो वही बात कि I agree and accept. इस टोकन में हम सब हाथ ऊंचा करेंगे कि आज के इस सत्र में, इस समय जो हमने तीन चार दिन का ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, हम इस रेजोल्यूशन के साथ अपने अपने वापस शहरों में, घरों में जाएंगे कि हम शिक्षा को, वैल्यूज को, स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि संसार में शांति हो, सुख हो, आनंद हो, केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए. एग्रीड? हाथ खड़ा करें. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति.
बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे चेयरपर्सन राजयोगी बीके करुणा भाई, मल्टीमीडिया चीफ ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू. सिर्फ इतना ही कहूंगी उनके लिए, वाइस चेयरपर्सन ऑफ मीडिया विंग आरईआरएफ, कंसल्टेंट टू जी नेटवर्क.
ओम शांति. परम पूज्य परमपिता परमात्मा के प्रिय संतानों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे अत्यंत हर्ष है जो आज का विषय आप सबने अपनी दिल से सुनाया है. क्या कमी है, क्या इसमें भरना है. जब मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रथम बार आया था अपनी साइंस एजुकेशन का गमंड तो था ही, और बहुत अच्छे एक पोजीशन में भी था एचएमटी में. जब दादी जी ने कहा कि हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग करते हैं, तो मैंने पूछा तो कौन से भगवान को याद करते हैं. तो उस वक्त उन्होंने जो दिल से हंसा वो मैं भूल नहीं सकता. जो कहा मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये भी नहीं मालूम है आपको कि भगवान एक ही होता है. तो वो दिन और आज के दिन मैं ये कभी भूल नहीं कर सकता कि भगवान भी अनेक हो सकता है, भगवान एक ही है. तो दिल में ये बात पहला दिन ही पक्का हो गया था, सत्यम शिवम सुंदरम. जैसे हम लोग अनेक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के डिग्री लेके हम यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लक्ष्य यही दिया कि इस यूनिवर्सिटी में आप रेगुलरली स्टडी करते हैं तो यहां जो प्राप्ति है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता आप बनते हैं. ये पहला पहला लक्ष्य उन्होंने स्पष्ट दिया, क्योंकि पूछते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो हमको कौन सा डिग्री मिलेगा यहां. तो ये भी बात स्पष्ट था कि यहां हमको ऐसी शिक्षा मिलेगी जो हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं. तो ऐसे कोर्स में हमने डिसाइड किया अपना जीवन में कि भाई मुझे क्या बनना है. तो आज आपके सामने इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसी लक्ष्य को लेकर आया हूं, खड़ा हूं। शिक्षा क्या प्राप्त की? तो जो हमको अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया, जो तीन सत्य, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इतना तो बता दिया कि परिवर्तनशील तो है बट डिस्ट्रक्टिव नहीं है, मतलब ना हो सके ऐसा करे वो नहीं हो सकता, ये विज्ञान ने हमको बता दिया है। जैसे आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा या पापात्मा, तो आत्मा को भी परिवर्तनशील कह रहे हैं। परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं कहा, शायद हिम्मत नहीं हुआ होगा। प्रकृति के लिए हम जानते हैं, सतो रजो तमोगुण का हम देख रहे हैं, तो इस समय पर तो हम सभी, एक आम शब्द है ग्लोबल वार्मिंग, पता नहीं कितने लोग क्या समझते हैं, जब कुछ भी होता है तो कह देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। अभी तक इस बात को हम सभी तक बहुत क्लियर रूप से बता नहीं पाए हैं, पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पष्ट बता रहे हैं, भाई मकान बहुत पुराना हो गया है, इसमें जीने जैसा नहीं है, नया मकान बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है? तो इस प्रकृति का एक ही सिद्धांत है, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। कर्म का फिलॉसफी को सभी मानते हैं, तो इसीलिए यह सृष्टि का जो नियम है, जो हम सबको जो भी कुछ है आज अपना ही कर्म से है, तो हमको ही अपनी कर्म को ही सुधारना है, जो सत्युग बनाना है, स्वर्ग बनाना है, सोने की चिड़िया फिर से इस भारत पे आना है, तो हमको ही बदलना है, वो भी कर्म से ही, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। आज जो कुछ भी है वो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चार अंगली इस तरफ है, हरेक का अपना ही कर्म से जो कुछ भी इस दुनिया का देख रहे हैं। तो इसीलिए यहां यही शिक्षा हमको दिया गया कि अपना ही कर्म से हमको इस सृष्टि का परिवर्तन करना है। तो ये साल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हम 10 लाख जो परिवार है, हम सब ने एक संकल्प किया है, तो एक महापरिवर्तन लाना है। तो आप कहेंगे जैसे इस इलेक्शन में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो भारत के लिए एक विकास का डेवलपमेंट, तो ऐसी आशा है, तो हम भी कुछ ऐसा चाहते हैं विकास के साथ साथ, तो हम आत्माओं का भी चरित्र का विकास हो। तो जो भी मेहनत सब मिलकर के करेंगे, तो भारत को फिर से स्वर्ग बनाने की एक आशा रख के ही हम सभी करेंगे। और आज इतना अच्छा समय है, जो ईश्वर के जो तीन पार्ट है, माता पिता भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है, तो आज जो सम्मेलन है, आप इनको शिक्षक कही है या गुरु कही है, तो हमारी भारत के जो गुरुकुल शिक्षण जो है, तो उसको हम चाहे ना चाहे वापस लाना पड़ेगा। अन्यों के लिए नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए ही करना पड़ेगा। फ्यूचर आपके हाथ में है, आपको केवल टीचर जो शिक्षा देने वाले ही रहना है, नहीं तो स्वयं गुरु बनना होगा, आशीर्वाद देना होगा अपनी जीवन से। केवल पाठ्यक्रम से नहीं होगा, तो इसीलिए शुरुआत विद्यार्थियों से नहीं, शुरुआत हमारे से है। तो गुरुकुल शिक्षा उस रूप से हम ना भी कर पाए, परंतु आज जो भी यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स, कॉलेजेस, जिन्होंने भी जो निमित्त बनकर के जो बनाए हैं, तो उसको केवल एक शाला या विद्यालय, विश्वविद्यालय ही ना करके क्या ऐसा हो सकता है कि उसको एक विद्या मंदिर के रूप में हम वातावरण बना सके। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी नाम तो विद्यालय है, परंतु आप अंदर आते ही आपको यहां का सब वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे कोई आश्रम में आप आए हैं, एक मंदिर में आए हैं। अलग मूर्ति नहीं रखा है, पर आप सब स्वयं परमात्मा के बच्चे, आप सब मूर्तियां हैं। तो यहां से जब आप बाहर जाएंगे, जो परमात्मा के बच्चे बनकर जाएंगे, तो आप स्वयं एक मूर्ति है। तो इसीलिए तो हमारे भारत के जितने भी जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसको भी हम एक विद्या मंदिर के रूप से, जैसे विद्या देवी कहा जाता है, तो जितनी बहनें वहां पढ़ते हैं वो विद्या देवी बनकर के बाहर आए, जितने भाई जो पढ़ते हैं विद्या देवता बन के बाहर आ जाए, तो सचमुच हमारा भारत का परिवर्तन कठिन नहीं है। और हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ इसलिए कर रहे हैं कि आपने एक बहुत अच्छा लक्ष्य लेके यूनिवर्सिटी बनाए थे, कमर्शियल के दृष्टि से नहीं किए हैं, जिन्होंने भी फाउंडर है तो उन सबका हृदय में यही है कि हमारे भारत के बच्चे होशियार बन जाए। तो इसीलिए उसके साथ साथ जो उसमें थोड़ी सी जो कमी आप देख रहे हैं, आप स्वयं फ्री फील कर रहे हैं, तो हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के परिवार आपके साथ जुड़ करके ऐसी एक शिक्षा भी उसके साथ हम दे, ताकि वो स्कूल एक विद्या मंदिर बन सके। ऐसी आशा रखते हुए मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में बहुत सारे वाद है, जातिवाद, आतंकवाद, ये वाद वो वाद, लेकिन सबसे अच्छे से अच्छा वाद है धन्यवाद। कुछ भी हो जाए, एक सॉरी दिल से कह दे और एक कह दे धन्यवाद, है ना। सॉरी कह देंगे तो गार्बेज जमा नहीं होगा, है ना। मुस्कुरा दे तो सामने वाला तो तैयार ही होता है कचरा डालने के लिए, लेकिन हम उसके कचरे को नहीं ले, इसलिए सॉरी करके मुस्कुरा दे और उसके साथ थैंक यू कह दे। तो मैं वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूं डॉक्टर के एस राठी। आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से 10 साल से जुड़े हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन विंग है। आप राइटर, ट्रांसलेटर और एडिटर है वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी की जो हमारी बुक्स है उनके, तो वो हम सबका धन्यवाद करेंगे।
ओम शांति। सर्वप्रथम हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक, चलाने वाले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मा कुमारी और आप सभी की ओर से शिव परमात्मा का हम इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उसके हम हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। आप सोचते होंगे कि क्या परमात्मा जो गतिविधि सम्मेलन में होती रही उसको देख रहे हैं? जी हां, बिल्कुल देख रहे हैं। आप समझ लीजिए कि हम आत्माएं हैं, आत्मा की यात्रा सतयुग से आरंभ हुई, त्रेता में आई, यहां तक उसमें सातों गुण रहे और पांच ये विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दबे रहे, और जब द्वापर से आत्मा आगे बढ़ी तो देहभान के कारण ये दबे हुए विकार ऊपर आने लगे और वो सातों गुण नीचे जाने लगे। कलयुग के अंत में जो है ये पांचों विकार उभर कर पूरी तरह से ऊपर आ गए और सातों गुण नीचे चले गए, यानी आत्मा में ये ऐसा ही है। जब ये सब नीचे चले जाते हैं तो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर आत्माओं का आह्वान करते हैं, उन्हें सचेत करते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और वो गुण तुम स्वतोगुणी आत्मा हो, मेरी संतान हो, परम धाम की रहने वाली हो। तो इस रूप में ये संस्था, क्योंकि परमात्मा आत्माओं को माध्यम बनाते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा को, जिनको ब्रह्मा का नाम दिया, उन्हें निमित्त बनाया, दादियों को निमित्त बनाया, मम्मा को निमित्त बनाया, और निमित्त बना करके और कितने ही भाई बहनों को निमित्त बनाया, और आज जैसा इस हमारे इस स्तर के चेयरपर्सन जो राजयोगी करुणा भाई ने बताया कि 10 लाख जो है आत्माएं अब इस ज्ञान में चल रही हैं और ईश्वर के इसको मानती हैं, तो इस रूप में आप सोचिए और स्वीकार कीजिए कि परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सुना रहा है, इस संस्था को चला रहा है। तो आप ईश्वर के घर में आए और ईश्वर के घर से ईश्वर जो संदेश दे रहा है उसको लेकर के जाइए, उस पर चिंतन कीजिए। जहां संशय होता है वहां दुविधाओं का जन्म होता है और उससे फिर मनुष्य उलझ जाता है, तो उस उलझन को समाप्त कीजिए और निश्चय कीजिए कि आप जब यहां आए हैं तो वैसे ही नहीं आए हैं। आप चाहे आपको परमपिता परमात्मा ने टच किया हो या किसी आत्मा को निमित्त बनाया हो जिसने आपको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में बताया और तब आप आए, तो आप सभी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो यहां आई, और आप 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से आप इस ज्ञान को सुन रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान को सुन रहे हैं। ज्यादा क्योंकि समय न लेते हुए मैं, मेरा कार्य धन्यवाद करने का है, मैं जैसे परमपिता परमात्मा का हमने सभी ने धन्यवाद किया, तो जो निमित्त आत्माएं बनी उनका भी हमें धन्यवाद करना, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत हैं। ब्रह्मा बाबा का मम्मा का, दादी प्रकाशमणि का, और जो आज हमारी दादियां हैं और जो आई भी इस सम्मेलन में, दादी जानकी ने अपना संदेश दिया, प्रसारित किया। दादी हृदय मोहिनी स्वयं आई कल, और दादी रतन मोहिनी भी आरंभ में आई, तो उनका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जितने ओपन सेशन चले, जिनमें विश्वविद्यालयों कॉलेजों के शिक्षाविद, जिनमें वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स आदि ने भाग लिया, उनमें से उनका संचालन और उनमें सक्रिय जो है भाग लेकर के चर्चाओं में भी भाग लिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आज के हमारे वक्ता हैं, जिन्होंने इस स्तर में आपके सामने अपने विचार रखे, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि कुछ बातें आपको दोनों तरह के, क्योंकि आज का सेशन जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी पर रहा, ब्लेंडिंग इनका समन्वय। मैं ऐसा मानता हूं, और मैं ही नहीं मानता हूं, ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानता है, मेरा अपना मत नहीं, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मत है, कि सतयुग में, इस कलयुग के बाद सतयुग आना है, और उसमें विज्ञान और आध्यात्मिकता शिखर पर होंगे, पूर्ण होंगे, परफेक्ट होंगे, उसी के कारण सारा सुख शांति होगा। तो ये, क्योंकि देखिए भारतीय जो विचारधारा है वो श्रेष्ठतम से नीचे, आत्मा श्रेष्ठतम थी, निकृष्टतम हुई है कलयुग के अंत में आकर, जबकि पाश्चात्य विचारधारा इसके विपरीत है। वो कहते हैं कि मनुष्य असभ्य से सभ्य बना है, तो आज जैसा सभ्य बना है, जिसे चिंतक जो है, विचारक जो है, कैसा कहते हैं, स्किल्ड बारबेरियंस कहते हैं उसको, आज का पढ़ा लिखा जो है वो स्किल्ड बारबेरियंस कहलाता है। तो ये विचार इसके ऊपर आज के वक्ताओं ने जो दिए हैं, हम सभी का जो है आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर बी के सीमा ने बहुत रोचक ढंग से अपना जो है इसका यही समन्वय विज्ञान और आध्यात्मिकता का बहुत रोचक ढंग से जो है रखा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो वाइस चांसलर्स, तीनों वाइस चांसलर्स ने, डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर, प्रोफेसर केपी मिश्रा, डॉक्टर विनय पाठक, तीनों ने ही बहुत ही अपने हृदय से जो जैसा उन्हें अनुभव होता ऐसे विचार हमारे सामने रखे, उनका के प्रति भी बहुत बहुत आभार है। और अनुराधा बहन ने भी जो योग अभ्यास करवाया, उसका भी हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। और प्रोफेसर वेद गुलियानी ने बहुत संक्षिप्त रूप में अपनी रिपोर्ट और फिर रेजोल्यूशन हमारे सम्मुख रखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अंत में हमारे राजयोगी करुणा भाई जो मल्टीमीडिया के चीफ हैं, जिन्होंने थोड़े ही समय में हमारे सम्मुख अपने अनुभव भी और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान भी हमारे सामने रख दिया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंत में आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना सम्मेलन कैसे होता, आपसे ही तो ये सम्मेलन हुआ है। तो आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने बिना किसी बीच में आलोचना के, टोका टाकी के, बिना कोई क्वेश्चन बीच में किए, आपने जैसा भी आपको सुनाया गया आपने सुना, पूर्ण शांति से आपने सुना। यह विशेषता ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हम मानते हैं, क्योंकि जहां स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, हमारे बीच उपस्थित है, तो ये प्रभाव हम सभी पे पड़ना स्वाभाविक है। तो इसके लिए फिर भी, क्योंकि किसी भी ऐसे सम्मेलन या सभा में हम इतनी शांति नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न डलता ही है। तो इसलिए आपके तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। एक ही अंत में शब्द जो है कि आप जो कुछ आपने यहां सुना है और जाकर के आप उसके ऊपर थोड़ा सा सकारात्मक चिंतन करना, नेगेटिव भी आएगा आपके उस पर, लेकिन सकारात्मक चिंतन करना, और इस विश्वविद्यालय का ये प्रैक्टिकल जो है ज्ञान है, इसको आप केवल जान लेना, मान लेना, इनसे काम नहीं चलेगा। जब तक आप जीवन में उसको उतारेंगे नहीं, यानी क्रोध है, क्रोध को मान लिया बुरा है, स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जब तक इसको जो है स्वयं जीवन में इसे खत्म नहीं करेंगे, आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो ओम शांति। अंत में मैं थोड़ा, क्योंकि हमारे बीच बहुत जो है ऐसे आए हैं मधुरवाणी ग्रुप, जिन्होंने स्वागत गीत जो है 3 बार प्रस्तुत किया, उनके भी हम आभारी हैं। आवास निवास में निमित भाई बहन जो जिन्होंने सहयोग दिया है, उनके अति आभारी हैं। और मीडिया और फोटोग्राफी के भाइयों का भी, भाई बहनों का भी हम हृदय से आभारी हैं। लाइट और साउंड वालों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। और भंडारे की सेवा देने वाले सेवाधारी भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ज्ञान सरोवर के निमित्त भाई बहनों का, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है हर प्रकार से, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज की जो है ये छोटी बच्ची कुमारी तनिषा का, के जिसने नृत्य इतना अच्छा प्रस्तुत किया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो और सभी का जिन्होंने इसके अतिरिक्त और भी कोई रह गए हों तो हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी के सहयोग से ये सम्मेलन सफल हो पाया है। ओम शांति।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर आप आए, सभी इतने सारे बोलने वाले, 3 दिन तक आपका मौन हो गया, सुनते ही रहे यार, आप स्टूडेंट बन गए। लेकिन कितनी सुंदर बात, बाकी सब लोगों को नमन तो करते ही है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से कहा जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और तीसरा आचार्य देवो भव। तो आप ऐसे अपने आचरण के द्वारा सबके रोल मॉडल बनने वाले सब यहां पर पधारे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आज विषय के अंतर्गत मैं 5 मिनट कहना चाहूंगी कि कहा कि साइंस के को जितना हम उपयोग करेंगे तो बेटर सोसाइटी बना सकते हैं। इस परिसर के अंदर ही आप देखेंगे और इसी विश्वविद्यालय में भी हम आपको बताएंगे कि ज्ञान सरोवर परिसर के अंदर जब बिजली चली जाती है तो यहाँ पर जो हम बाकी बिजली का उपयोग करते हैं वो सोलार एनर्जी है, साइंस साधनों का उपयोग कर रहे हैं। आज स्मार्टफोन हो गया है, व्यक्ति भले साधारण हो लेकिन उसके हाथ में स्मार्टफोन होता है, वो भले स्मार्ट ना हो लेकिन स्मार्टफोन का जमाना है। और अगर वो व्हाट्सएप पर ना हो तो पूछते हैं कि है ना, और वैसे भी आजकल हमने कभी पढ़ा कि आते हैं मेहमान तो उसको चाय गर्म नहीं लेकिन वो पूछते हैं वाईफाई है पासवर्ड बताना, आज वो जमाना है। लेकिन उसके अंदर भी सब सर्फ करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन उसी व्हाट्सएप का उपयोग हम बताएं तो हमारे जो 10 लाख भाई बहन हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं तो हमारे जो गॉडली वर्शंस हैं कई बार उन लोगों से मिस हो जाते हैं, रोज उनको व्हाट्सएप पर हमारे गॉडली वर्शंस मिल जाते हैं। ये है साइंस का उपयोग। 135 देशों के अंदर, पांचों ही खंड के अंदर हमारी डे टू डे जो मुरली जाती है वो पोस्ट के द्वारा जाती है लेकिन ये व्हाट्सएप के द्वारा सभी जगह पर पहुंच जाती है। ब्रह्मा कुमारी इसकी वेबसाइट पर वो लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं और ये गॉडली वर्सन से वो वंचित नहीं रहते हैं। वैकेशन की में ऐसे हमारे समाज के सभी वर्गों को बुलाया जाता है लेकिन हमारे सितंबर से अप्रैल तक हमारे जो रेगुलर भाई बहन है इस संस्था से जुड़े हुए हैं वो लोग आते हैं। उनके लिए हर मास या हर 15 दिन पर हमारे जो लाइव टेलीकास्ट होता है परमात्मा अवतरण का, वो भी साइंस का साधन लाइव टेलीकास्ट हर देश के अंदर पांचों ही खंड में वो लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। यह है साधन का उपयोग, साइंस के साधनों का। आने वाले दिनों में हम कहते हैं कि बिजली महंगी हो जाएगी और बिजली कम भी पड़ जाएगी, उसके लिए भी शांतिवन परिसर के बाजू में ही हमारा सोलार वन 65 एकड़ में है जहां पर रिसर्च चल रहा है और थर्मल पावर स्टेशन भी बनेगा। यह है साइंस का उपयोग बेटर समाज के लिए। फिर भाई साहब ने अभी बताया कि एग्रीकल्चर की बात, तो यहां पर और एक तपोवन के अंदर हमारी 65 एकड़ जमीन है, वहां पर भी यौगिक खेती की जाती है और भारत के अंदर भी हमारे ये यौगिक ऑर्गेनिक खेती होती जाती है। टीवी के लिए इडियट बॉक्स कहते हैं, स्वच्छ मनोरंजन नहीं मिल रहा है, हर एक को पता है कि ऑलरेडी हमारे हाथ के अंदर उसका रिमोट कंट्रोल है, हम बंद कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है और दोष देते हैं टीवी को। लेकिन हमारी पीस ऑफ माइंड चैनल चल रही है जिस पर स्वच्छ आध्यात्मिक मैसेजेस मिलते रहते हैं। जो अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सभी को माउंट आबू नहीं आते हैं लेकिन फिर भी उनको पीस न्यूज भी मिलते जाते हैं और हमारा ये लाइव प्रोग्राम भी वो देख सकते हैं। यह है टीवी का सदुपयोग। उसके साथ साथ देखा जाए तो रेडियो सब सुनते रहते हैं, अभी तो रेडियो का जमाना चला गया लेकिन एफएम आ जाने के बाद अभी लोग वो भी सुनते रहते हैं। तो हमारा रेडियो मधुबन है, उसके अंदर भी जितनी फ्रीक्वेंसी में वो जाता है लोकल कम्युनिटी के साथ हम स्वच्छ मनोरंजन देते हैं विदाउट कॉमर्शियल एड के। तो यह है साइंस का सदुपयोग। तो ऐसा नहीं है लेकिन स्पिरिचुअलिटी जितनी बढ़ती जाएगी, साइंस के साधन हमारे लिए ही बनते हैं, उसकी रिफाइननेस करते जाए और उसका सदुपयोग करते जाए लेकिन स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा दे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही मैसेज है कि स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। हम कोटेशन फॉरवर्ड तो कर देते हैं कि हे प्रभु इस जगत को आप परिवर्तन करना, लेकिन शुरुआत मेरे से करना, तो इसी बात को लेकर के। और ईश्वर को भी पता था कि आने वाले दिनों में ई का जमाना आने वाला है, ई पेपर, ईमेल, ई टिकट, ई रिचार्ज, ई ट्रांसफर, नेवर फॉरगेट ई ईश्वर, इसीलिए उसने ये नाम रखा क्योंकि ई एवरीथिंग, ई इजी फॉर एवरीवन एवरीडे। तो जो मेडिटेशन का आप सीख के जा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करेंगे और उस ईश्वर की पिता की साथ के साथ हम इस समापन सत्र को यहां पूरा करते हैं। ओम शांति।